मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। पालत या अय्युहल मलाउ। अब खत सुनाया है मलका ने। खत सुनाने के बाद मलका कहती है, या अय्युहल मलाउ, ए दरबारियो, ए मशीरो। मलाउ जो है किसकी जमा है? हाँ, आप पढ़ भी चुकी, किस सिपारे का नाम है? काल अल मलाउ, है ना? हाँ, तो ये कौन सा सिपारा है? नवा सिपारा है के सरदारों ने कहा। तो मीम लाम हमजा जो है इसके मानी होते हैं भरावा होना। तो जैसे बर्तन में कोई चीज डालें तो वो भर जाता है ना बर्तन, उसके लिए भी आता है मलाल इना, भरावा बर्तन। या फिर ये कि सरदार जो हैं, बास कहते हैं कि वो गुरूर से फखर से भरे हुए होते हैं, क्यों? उनके पास दौलत होती है, अमारत होती है। बास कहते हैं कि वो महफिल में होते हैं तो महफिल को भर देते हैं, इसलिए कि वो हाकिम होते हैं, सरदार होते हैं। तो बहरहाल अब वो अपने सरदारों को कहने लगी है, मेरे सरदारों अफ्तूनी, मुझे फतवा दो। अब ये नहीं कहा कि अखबिरनी, मुझे खबर दो, ये नहीं कहा। तो अफ्तूनी ये लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, और ये लफ्ज जो है वो आपको याद है कि आपने कब पढ़ा था? ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वाकया है, जो कहानी है, वहां पे आपने पढ़ा था। और उस वक्त क्यों पढ़ा था कि आए यूसुफ, आप हमें हमारे ख्वाब के बारे में फतवा दें, या हमारे ख्वाब की जो है वो आप हमें ताबीर दे दें। और जो फतवा है इसका रूट क्या है? फातावो, फातावो। और इसके मानी होते हैं फातावो के, ये लफ्ज जो है ये फता फितिया खिदमतगारों के लिए भी आता है, और अफ्ता ताबीर बताएं, जवाब दें, और इस कफ्ता आप पूछने के मानी में आता है। तो यहाँ पे क्या है? अफ्तूनी, मुझे फतवा दो। असल में फतवा होता है मुश्किल मसले का जवाब। एक होता है ना आम बात, आप मुझे वो बात बता दे, मुझे आप ये मसला बता दे, ऐसे नहीं, मुश्किल मसला, खास मसला, उसका फतवा। अफ्तूनी, मुझे फतवा दो, फी अमरी, मेरे इस मामले में। अब किताबुन करीम है, बड़ा अजीब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू है, सुलेमान का नाम है, स्टैम्प किया हुआ खत है, अजीब तरीके से मेरे ऊपर डाल दिया गया है, दे दिया गया है, और उसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मेरी अताअत करो, मेरे पास चली आओ, और ये कहा गया है कि तुम मुस्लिम बन जाओ। तो ऐ मेरे मशीरो, ऐ मेरे सरदारो, ऐ मेरे दरबारियों, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मा कुंतु कातियतन अमरन, मैं नहीं कतई बात करती। कातियतन का लफ्ज जो है ये इस्म फाइल है, हिस्सी मानवी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, और जैसे किसी चीज को काटना जो नजर आती है उसके लिए भी आता है, और जैसे कतई बात करना, दो टोक बात, फैसला कुन बात, उसके लिए भी आता है। तो मा कुंतु कातियतन, मैं नहीं कतई बात करती, अमरन बात करना, फैसला करना, मैं कतई बात नहीं करती, मैं फैसला कुन बात नहीं करती। हत्ता तशहदूनी, जब तक के तुम मुझे जो है वो मशवरा ना दे दो। अब आप देखें कि यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो तशहदून का है, और तशहदून का मतलब क्या है कि जब तक तुम्हारी मौजूदगी ना हो, जब तक तुम्हारी राय ना हो, जब तक तुम शाहिद ना हो, यानी शहादत गवाही को भी कहते हैं ना, है ना, और शाहिद जो मौजूद है। तो जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो उस वक्त तक मैं किसी अमर का कतई फैसला नहीं किया करती। ये जो कहने को उसने एक बात कही है, लेकिन यहां पर जो है इससे क्या बात पता चलती है? हाँ, शाबाश, कि वो मलका जो थी वो डिक्टेटर नहीं थी, है ना, तो क्या थी? डेमोक्रेट थी, है ना, वो मशवरा किया करती थी, तो वो राय लिया करती थी। تو ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنی حکومت کے جو ممبر تھے، جو ارکان تھے، جو اس کے مشیر تھے، ان کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ مشورہ کرنے سے پہلے اس نے ڈرایا نہیں ہے بلکہ اس نے حوصلہ افزائی کی ہے. بعض اوقات مشورہ تو کیا جاتا ہے لیکن اتنا روب داب اور اتنی انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں مشورہ دینے والے وہ وہی مشورہ دیتے ہیں جو مشورہ لینے والے کو مطلوب ہوتا ہے. اب وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ حوصلہ افزائی کر رہی ہے، دل جوئی کر رہی ہے، اور جو ہے ان کی ہمت افزائی کر کے کہتی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر کرتی ہی کوئی نہیں ہے نا. تو یہ ہے اصل بات. اچھا اس بات سے، ملکہ کی اس بات سے ہمارے لیے عمل کا کیا اصول نکلتا ہے؟ ہاں شاباش. اہم امور میں مشورہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور مومنین کی بھی سنت ہے. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں. اور دوسرا سورت آل عمران میں آپ پڑھ چکی، غزوہ احد پہ تبصرہ جب آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشورہ دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ بے شک صحابہ سے غلطی ہو گئی، درہ انہوں نے وہ چھوڑ دیا اور جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی، آپ زخمی ہو گئے، مسلمان بہت سے شہید ہو گئے، بہت نقصان ہوا مسلمانوں کا. لیکن یہ مت سوچنا کہ انہوں نے چونکہ غلط مشورہ دیا تھا کہ احد کی جنگ جو ہے وہ باہر آ کر لڑی جائے، اندر نہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہ مشورہ تھا نا. تو اب یہ نہ ہو کہ آئندہ آپ مشورہ ہی نہ کریں، بلکہ کیا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر. تو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اہم امور میں مشورہ کرنا مومنین کی سنت ہے اور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مومنین کی صفات میں سے ہے اور رسول اللہ کی سنت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب مشورہ کیا جاتا ہے تو مشورہ کرنے میں برکت ہوتی ہے، مشورہ کرنے میں خیر ہوتی ہے. مشورہ کرنے سے جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں تو وہ سارے شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ کام کرنے والا اکیلا کر رہا ہے، شخصی حکومت نہیں ہوتی، ڈکٹیٹر نہیں ہوتی جیسے فرعون کی تھی یا آج کے دور کے کسی بادشاہ کی، بلکہ کیا ہے کہ مشورہ کرنے سے حکومت جب جمہوری ہو جاتی ہے، شورائی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے وہ سارے لوگ جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ نظام تو وہاں پہ شاہی تھا، شاہی نظام رائج تھا، لیکن کوئی ظالمانہ نہیں تھا. اہم معاملات میں ملکہ اپنے وزیروں سے، اپنے درباریوں سے، سرداروں سے مشورہ کیا کرتی تھی. اچھا ایک اور بات پتا چلتی ہے کہ مشورہ کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے فیصلہ جو ہے وہ امیر خود بھی کر سکتا ہے، اگر لگے کہ باقی لوگ جو مشورہ دے رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کرنے میں قتل و غارت ہوگی، نقصان ہوگا، تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، یا یہ کہ اتنے لوگ ہیں یا ویسے تجربہ کار نہیں ہیں یا اتنے سمجھدار نہیں ہیں یا اس بات کو نہیں دیکھ رہے جو کہ اس کی سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو جو تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ باہر آ کر جنگ کی جائے، لیکن جب اکثر لوگوں نے اپنی رائے کا اصرار کیا تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار تھے. یہ کہ کون سی میں بات کر رہی ہوں؟ شاباش، غزوہ احد کی میں بات کر رہی ہوں. اور پھر جو ہے کچھ صحابہ تو آپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ اندر ہی جنگ کریں، لیکن جب زیادہ لوگوں نے اصرار کیا اور خاص طور پر وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو پھر جو ہے آپ نے ہتھیار پہن لیے، آپ تیار ہو گئے جنگ کے لیے. اب جب لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کہنے لگے کہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں جنگ کرتے، میدان احد میں نہیں، اندر ہی کرتے ہیں مدینہ کے اندر. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ نبی جب ہتھیار پہن لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں اتارتا. कि मशवरा कर जब किया फैसला किया जाए तो मशवरे से किया जाए, फैसला हो जाए फिर उस पर डट जाया जाए। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है ना। मसलन हमने अब ये तय किया कि पेपर जो है वो भी अगर कोई मिस करेगा छोड़ेगा तो हम पेपर नहीं लेंगे बीच में ना। एक तो लोग पेपर वक्त पे दें ना, और जो है वो वक्त जाया करें, हर दूसरे दिन एक बंदा आके कहे कि मेरा फलां पेपर रह गया आप हमसे ले लें। और दूसरा ये कि जो है वो वक्त पर आए ना, और तीसरा ये कि फिर और मुतालबा कि हमें जो है हमारा पेपर जो है वो लिया जाए। तो इस तरह ऑफिस और जो भी जिम्मेदारान हैं उनका वक्त भी जाया होता है, नुकसान भी होता है, और इस तरह जो है वो लोगों के अंदर सुस्ती, काहली, ढील से नजायज फायदा जो है उसका मिजाज उभरने लगता है ना। अब उसके बाद फिर कोई आकर ये कहे कि नहीं बड़ा जरूरी मसला है मेरा ले लें, तो ठीक है एक रूल रेगुलेशन अब बन गया है तो उस पर जो है वो अमल किया जाना चाहिए और अमल होना चाहिए, और उसको हम सबको सराहना भी चाहिए। और उसका नतीजा क्या निकलना चाहिए, हुदूद की तरह गायब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग हुदूद बन जाएं, आप जो है आप आपकी कोई कहीं भी अपॉइंटमेंट होती है आप उसको मिस तो नहीं करते ना। आप क्लास में आपकी कमिटमेंट है सिर्फ कुछ अरसे की, तो आप इसमें मेहनत करें, वक्त लगाएं, कुरान को पढ़ें ताकि आप अच्छे तरीके से कुरान जो है उसको समझ कर अपनी जिंदगी में नाफिज कर सके। आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप कोई बात सुन रहे हैं, आप गायब नहीं होते वहां से। अगर थोड़ी देर के लिए हटे भी कान उधर ही लगे हुए होते हैं कि बात क्या है, तो ये कैसी बात है कि क्लास कुरान की से कई दिन के लिए लोग जो है वो गायब हो जाएं, और उसके बाद फिर कहें कि अभी तक हम सोच रहे हैं कि अब जला जाना चाहिए, तैयार ही ना हो, हिम्मत ही ना पाए, कभी कोई मसला कभी कोई मसला, ये तो कोई बात ही नहीं ना हुई। तो असल बात क्या है कि मशवरा जरूर करना चाहिए, उस्ताद को अपने शागिर्दों से, वालदैन को अपनी औलाद से, दोस्त को दोस्तों से, यानी जिन से मुतल्लिक वो मसला होना उस मसले को उन लोगों में डालकर उनसे उनका मशवरा उनसे मशवरा पूछना चाहिए। अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, कभी लोगों को जमा करके कभी इंफरादी तौर पर। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने क्या किया था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु को लोगों को इकट्ठा करके मशवरा नहीं किया था। आप मदीना की गलियों में चलते थे, पूछते थे, और एक एक से पूछते थे कि बताओ कि तुम्हारी जो है वो क्या राय है, कौन शख्स ज्यादा नेक और मुत्तकी है, और फिर किसी से पूछते थे कि अच्छा बताओ उमर के बारे में तुम्हारी राय क्या है। तो मदीना की गलियों में आपने चक्कर लगाए और लोगों से पूछा, और फिर ये भी कहते थे कि अगर अल्लाह पूछेगा कि मेरे बाद किसको छोड़कर आए हो, तो मैं कहूंगा कि अल्लाह ताला रूए जमीन पर जो तुझसे सबसे ज्यादा डरने वाला था मैं उसको जो है वो खलीफा मुकर्रर करके आया हूं, है ना। तो आप देखें कि आपने अपने बेटे को उसमें शामिल नहीं किया था। तो क्या करना चाहिए कि मशवरे में मफाद नहीं होना चाहिए, मशवरा सबसे करके फैसले में भी मफाद नहीं होना चाहिए और मशवरे में भी मफाद नहीं होना चाहिए। तो बाद शौहर अपनी बीवी से मशवरा नहीं करते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी से मशवरा किया। सुलह हुदैबिया का मौका है और जो है वो आए हैं मुसलमान उमरा करने के लिए, और हुआ क्या कि काफरों ने आगे बढ़ने नहीं दिया, और आपने कहा कि यहीं कुर्बानी कर दी जाए, एहराम उतार दिया जाए। और अब सहाबा से कहा कि एहराम उतार दें, कुर्बानी करें, और सहाबा अपनी जगह से टस्से मस नहीं हुए। उन पर बड़ी ही रंज गम की कैफियत आ रही है कि अल्लाह का नबी है और ख्वाब देखा है, ख्वाब तो वही होता है और सच्चा होता है, तो फिर हमने उमरा किया ही नहीं, तो अब कैसे हम एहराम उतार दे। बोले कुछ नहीं है लेकिन अमल भी नहीं किया, अभी सोच की कैफियत में है, सोच रहे हैं। और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आप सहाबा से कुछ कहें और सहाबा उठे ना, अमल ना करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, खैमे में आए हैं, और उस वक्त आपकी बेहतरीन मशीर कौन थी, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, क्योंकि कुर्रे में उन्हीं का नाम निकला था। आप उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, कितना बेहतरीन मशवरा दिया, आप अपना एहराम उतार दीजिए और आप जो है वो कुर्बानी करें। और आपने एहराम उतारा, कुर्बानी की, सहाबा ने फौरन एहराम उतार कर कुर्बानी करनी शुरू कर दी। यानी देखा कि अल्लाह के नबी का अब ये फैसला है और आप सहाबा भी फौरन अमल करने लगे। तो औरत बेहतरीन मशीर है, और इससे क्या बात पता चलती है कि इसी तरह हमें अपनी जिंदगी में अपने जो भी बच्चे हैं या शौहर अपनी बीवी से या बीवी अपने शौहर से या दोस्तों से अपनी जिंदगी में मशवरे करने चाहिए तो इसमें खैर निकलती है। قالت يا ايها الملا افتوني في امري, मलका ने कहा ए मेरे मशीरो, ए मेरे सरदारो, मेरे इस मामले में, मेरे इस खास मसले में मुझे मशवरा दो। मा कुंतु قاطعتن امرا, मैं किसी मामले में कतई फैसला नहीं करती, हत्ता तशदून, जब तक के तुम मुझे फैसला न दे दो, जब तक के तुम मुझे अपनी गवाही न दे दो, जब तक के तुम मुझे अपनी राय न दे दो। قالوا نحن, उन्होंने कहा نحن اولو قوة و اولو باس شديد। अब आप देखें कि जब उनकी हौसला अफजाई हुई है, जब मलका ने उनको थपकी भी दिया कि तुम्हारे बगैर मैं फैसला ही नहीं करती, तो फौरन वो बोल दे, قالوا, उन्होंने कहा نحن اولو قوة, कि हम कुव्वत वाले हैं। अब यहां पर उलू कुवा तीन जो है इससे क्या मुराद है, अददी तौर पर कि हमारे पास बड़ी कुवत है, अफराद जो हैं, अफराद की तादाद के अतबार से हम ताकतवर हैं, हमारे पास बड़े वसाइले जंग हैं। उलू कुवा तीन से मुराद क्या है, अददी और जिस्मानी तौर पर कुवत, मजबूती, वसाइल के अतबार से मजबूती। उलू बासिन शदीदिन, और हम जो हम हैं, उलू क्या मानी है इसके, उलू के वाले, कि हम वाले हैं। बास किसे कहते हैं, ये भूख के लिए भी आता है, जंग के लिए भी आता है, और ये तकलीफ वगैरह के लिए भी लफ्ज आता है बास का। तो यहाँ पे इसके मानी क्या है, जंग के हैं, कि हम जो हैं जंगी आदमी है, शदीद सख्त किस्म की, गोया के हमारे अंदर जंगी महारत पाई जाती है, जंगी महारत में बड़े मशहूर हैं। तो शदीद से और ज्यादा इस बात का पता चलता है कि हम लोग जो हैं वो जंगी कुव्वत रखते हैं, जंगी महारत रखते हैं, हमारे अंदर जंगी सलाहियत पाई जाती है। तो अब आप देख लें, और बिल्किस जो थी मलका सबा, कहते हैं कि इसकी मजलिसे शूरा के अरकान 313 थे, और इनमें से हर एक आदमी 10,000 आदमियों का अमीर और नुमाइंदा था। 313 अरकान है मजलिसे शूरा के, और हर एक आदमी 10,000 आदमियों का अमीर और नुमाइंदा था। ये इमाम कुर्तबी जो है उन्होंने तफसीर कुर्तबी में ये बात लिखी है। इससे आप अंदाजा कर लें कि नहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीदिन जो है, इससे अंदाजा कर लें कि फिर कितना ज्यादा उसके पास जो थे वो लोग थे, है ना, और कितना बेहतरीन वो रिस्पांस देते हैं। और अच्छा, ये बात कह के हम जो हैं वो, हमारे पास सामान भी खूब है, हमारे पास जो है वो ताकत भी खूब है, अफराद भी खूब है, हमारे पास जंगी सलाहियतें भी खूब हैं, फिर कहते क्या है, वल अमरु इलैकी, फैसला तेरे हाथ में है, आगे फैसला करना तेरी अपनी मर्जी है। ये बात बड़ी अहम है, वल अमरु और मामला इलैकी, अगर काफ के ऊपर जबर होती तो क्या था, मुजक्कर को कहा जाता, मुजक्कर के लिए है, काफ पर जबर मुजक्कर के लिए, इलेही की काफ के नीचे जेर है, इसके मानी ये हैं कि अब जो है फैसला करना आपकी मर्जी है। अब ये नहीं कि राय देकर इसरार कर रहे हैं, नहीं, हमारी मर्जी मानी जाए, है ना, बल्कि जो है वो मलका से ये कहते हैं कि आप जो हैं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे फैसला करें, आपके इख्तियार में है फैसला, और हम आपके साथ हैं, हम आपके हरीफ नहीं बनेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे। अगर जो है वो ईद की पार्टी जो है वो बुध को रखी जाएगी तो आएंगे, मंगल को रखी जाएगी तो नहीं आएंगे, है ना। अगर जो है वो कोई भी, जैसे क्लास में भी बहुत सी चीजों पर मशवरा होता है, तो आप कहते हैं कि नहीं, वो जो क्विज हुआ है उसमें तरीका ये नहीं, ये इख्तियार किया गया इसलिए हम नहीं अब उसमें शिरकत करते, है ना। या घर में मशवरा हो रहा है कि वाइट वॉश करनी है तो रंग कौन सा होना चाहिए, कोई कहता है सफेद, कोई कहता है नहीं सफेद नहीं वाइट गंदा हो जाता है, ऑफ वाइट होना चाहिए, वो कहता है नहीं पिंक होना चाहता है। और अब तो देखें तो बड़े बड़े ही अजीब अजीब किस्म के रंग भी जो है बच्चे मुतालबा करते हैं, है ना। तो उसमें ये है, अब इसका ये नहीं मतलब कि हमारी मर्जी की वाइट वॉश नहीं होगी तो हम कहेंगे कि अच्छा अब हम नहीं करेंगे, खुद ही कर लें आप लोग, अब आप जैसे मर्जी करें खुद ही खरीद कर लाएं, मेरा मशवरा क्यों नहीं माना गया, है ना। इसी तरह घर में खाने के लिए अम्मी मशवरा करती हैं तो आप ये कहें कि नहीं भाई नहीं, क्योंकि हमारी मर्जी का खाना नहीं पका, अब हम खाना ही नहीं खाएंगे। या फिर ये कि जो है वो बाजार से चीजें लानी है, आपकी मर्जी उसमें शामिल नहीं हुई और आप कहें कि नहीं हम चीजें नहीं लेकर आते, है ना। या फिर यही कि जो है जैसे शादी शादी जो है उसमें करना, अब लड़की अपनी अगर मर्जी कर ले या लड़का अपना अपनी मर्जी कर लेता है तो अब वो हो सकता है उनको समझ ही इतनी ना हो, वो सही फैसला ही ना कर पाए, तो इतना बड़ा अहम फैसला उनको अकेले नहीं करना चाहिए। इसी तरह वालदैन को भी अकेले नहीं करना चाहिए कि बेटी और बेटे की शादी कर रहे हैं और मशवरा भी नहीं किया उनसे और बस उन पर लाकर थोप दिया, नहीं मशवरा किया जाए, मशवरा में बरकत है, आपस में मिलजुल कर एक फैसला किया जाए और फिर आपस में उसकी जिम्मेदारी जो है मिलजुल कर उसको कबूल किया जाए। और जब मशवरा नहीं किया जाता फिर क्या होता है, कभी वालिदैन शामिल नहीं होते, कभी औलाद शामिल नहीं होती और फिर नतीजा जो है वो खराबी बर्बादी तबाही की शक्ल में जो है वो सामने आता है। तो बहरहाल अब मलका जो है वो क्या कहती है, मलका को उसके दरबारी क्या कहते हैं, वल अमरु इलेही की, फैसला तेरे हाथ में है, फनजुरी माजा तामुरीन, के फनजुरी बस तू देख, बस तू सोच, बस तू जो है वो फैसला कर। अब वो क्या कहते हैं कि आप खुद ही सोच लें, माजा तामुरीन कि तू हमें क्या हुक्म देती है, तू हमें क्या कहती है, आपको खुद फैसला करना है, हम अतात के लिए जो है वो तैयार हैं। तो अब आप देख लीजिए कि यहां से हमें क्या बात पता चलती है, हमें ये बात पता चलती है कि दरबारी जो थे ना जिससे उसने मशवरा किया उनका रुझान जो था ना वो जंग की तरफ था। क्यों उन्होंने ये पता चलता है कि रुझान जंग की तरफ था, जंग के लिए दो ही चीजें तो चाहिए होती हैं, एक चाहिए होती है जंगी वसाइल और दूसरा चाहिए होता है जंगी महारत और बसीरत और मजबूती। तो उन्होंने क्या कहा कि उलू कुवतिन व उलू बासिन शदीद, उन्होंने कहा दोनों चीजें हमारे पास हैं लेकिन फैसला तेरे हाथ में है, जो तू करे हम उसके लिए तैयार हैं, बस तू सोच के तू हमें अब क्या हुक्म देती है। तो इससे जो है वो क्या बात पता चलती है कि उन्होंने अपना रुझान भी बता दिया लेकिन उसके साथ जो है उन्होंने जो है वो उसके साथ ही मलका पर फैसले को छोड़ भी दिया। तो क्या करना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, है ना। आखिरी फैसला अगर बच्चे वालदैन पर छोड़ दें, अगर तालबिल उस्ताद पे छोड़ दें तो फिर क्या है, मशवरा तो हो गया है तो आपस में मशवरे के बाद फिर एक फैसला जो है वो किया जा सकता है। कालत इन्नल मुलूका इजा दखलू करियतन, कालत कौन बोली, कौन बोली, मलका बोली। अच्छा पीछे भी आपने जो है वो एक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कालत वो चींटी के लिए था, कालत नमलातुन वो कौन थी, वो चींटियों की मलका थी, वो चींटियों की मलका थी। ये कौन है, ये कौमे सबा की मलका है, दोनों मलका ही है ना, दो दफा कालत आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दो दफा काला कालत आया है और दो मलका के लिए आया है, हैरान तो नहीं होंगे ना, है ना, माशाल्लाह, इसलिए कि बहुत तवज्जो से आप पढ़ रहे हैं ना। कालत इन्नल मलूका, तो कहा बेशक के बादशाह, मलूक जो है ये किसकी जमा है, हाँ जो है ये मलिक की जमा है और मलकियत रखने वाले बादशाह। तो बेशक बादशाह इजा दखलू जब वो दाखिल होते हैं, करियतन किसी बस्ती में किसी शहर में किसी मुल्क में, अफसदूहा तो उसमें फसाद करते हैं, उसे खराब कर देते हैं। हा की जमीर किसके लिए आई है? करियतन के लिए। वह जालू और बनाते हैं, करते हैं, इज्जता इज्जत वाले, आहलिहा इसमें रहने वाले, जो उसमें रहने वाले इज्जतदार होते हैं, इज्जत वाले लोग होते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? अजिल्लतन, तो उनको जलील कर देते हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ख्वार करते हैं। वकजालिका यफअलून, यही कुछ वो किया करते हैं। अब आप देखें कि यहां पर हमें क्या बात पता चलती है कि मलका ने अपने दरबारियों का मशवरा कबूल नहीं किया। तो मलका कौन थी? मलका बड़ी समझदार थी और उनका रुझान था जंग का, और उसने जो है वो जंग का जो रुझान था उसकी हौसला अफजाई नहीं की। तो इससे क्या पता चलता है कि औरत भी अकलमंद होती है। कौन है जो कहते हैं कि औरत जो है वो बेवकूफ है और उसको अकल ही कोई नहीं है? यानी औरत तो छोड़े, पीछे नमला तो उन भी कितनी अकलमंद थी, चूंटी भी, यानी चूंटा नहीं था वो, चूंटी थी नमलतुन। कालत नमलतुन अय्युहन नमलू उदखुलू मसाकिनकुम। और वो चूंटी जो थी वो बहादुर कितनी थी, जब उसको पता चल गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम उसका लश्कर आ रहा है, तो उसने नहीं कहा कि सारों को छोड़ो, मौजूदा जो आज के दौर के बादशाह हैं वो अपनी जान बचा लेते हैं ना, उड़कर किसी और मुल्क में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पीछे वालों का देखा जाएगा, बेशक फिर वो टेलीफोन खिताब करते रहे। होते वो लीडर हैं, आवाम जो है वो गलियों में और सड़कों में मरती रहे, मारती रहे, उनके कुश्ते लगते रहे, उनकी लाशें बिखरती रहे, खून से जमीन जो है वो सैलाब होती रहे, और लीडर का है कि वो भाग गए। तो आजकल के लीडर ऐसे ही हैं, धुआंधार तकरीरें, अवाम के फिर गले कटते हैं तो फिर वो अपने महल के अंदर होते हैं, या फिर उनकी टांग जहाज में होती है, या फिर वो कहीं भी अमेरिका के या बर्तानिया या किसी और मुल्क के वहां जो महल बनाए होते हैं, कई तो महल होते हैं, उसमें बैठ जाते हैं। अवाम जो है वो आटे के लिए और घी के लिए और चावल के लिए और इज्जतों के लिए वो रो रही होती है, कहीं इज्जत लुट रही है, कहीं भूख लगी हुई है, मुख्तलिफ परेशानियों में अवाम जो है वो घिरी हुई होती है। तो मैं इस बात पे सोच रही थी कि चूंटी कितनी बहादुर थी, भागकर अपनी जान नहीं बचाई, भाग के छुप जाती ना अपने बिल में, कहती देखी जाएगी इतनी चूंटियां, इनका क्या करूं, देखी जाएगी जान खाई हुई है इन्होंने तो। बल्कि क्या किया, या यू हन्नमलु खुलू मसाकिनकुम, दाखिल हो जाओ अपने घरों में, है ना। तो और चूंटियां बड़ी जल्दी एक जगह जमा हो जाती हैं, एक दाना कहीं उनको नजर आता है सारी चूंटियां वहां पे जमा हो जाती हैं। शहद की जो मक्खियां हैं उनके अंदर भी बड़ा डिसिप्लिन और टीम वर्क पाया जाता है, चूंटियों में भी बड़ा पाया जाता है। पता नहीं इंसान को क्या हो गया है, है ना। हजारों साल से नरगिस क्या कर रही है, अपनी बेनूरी पे रो रही है, हजारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो असल बात क्या है कि औरतें जो हैं ये भी बड़ी अकलमंद होती हैं, बड़ी मामला फहम होती हैं, बड़े अच्छे मशवरे देती हैं, बड़े अच्छे फैसले करती हैं। तो असल बात क्या है कि इसका ये नहीं मतलब कि मर्द अच्छा फैसला नहीं करते, मर्द भी अच्छे होते हैं, वो भी अच्छा फैसला करते हैं, अच्छा अच्छे मशीर होते हैं। तो आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए। अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर मर्द को मजबूत बना दिया, औरत को कमजोर बनाया, मर्द को बाहर का काम दिया, औरत को अंदर का काम दिया। तो जिस तरह का जिससे काम लेना था उस तरह की उसको सलाहियत दे दी। तो कालत इन्नल मलूका, कहने लगी कि बादशाह इजा दखलु करियतन, जब वो किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, और यहाँ पे क्या है कि जब वो किसी बस्ती में घुस जाते हैं, अफसदूहा, तो उसमें फसाद करते हैं और उसके इज्जतदारों को जलील करके रख देते हैं। और आप देख लें कि आम तौर पर जो फाते होते हैं जब वो यानी कोई जंग करने आते हैं और वो जंगजू होते हैं और वो खूनखार होते हैं, तो क्या करते हैं, जंग का मकसद भी क्या होता है कि इंसानों को इंसानों का गुलाम बनाया जाए, या किसी के तेल पर कब्जा कर लिया जाए, या किसी की जो हुकूमत है उससे उसको हटा दिया जाए, دوسرے کی کاٹ کرنا، دوسرے کی جاسوسی کرنا، یا اپنی تہذیب اور اپنا جو کلچر ہے اس کو پھیلایا جائے، ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں، اور پھر کیا ہے کہ قوموں کی قومیں جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، سروں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیتے ہیں. علم کی جو علم کا ورثہ ہے، لائبریریوں کی لائبریریاں دجلہ جو سمندر ہے، دریا ہے، اس کے اندر بہا دیتے ہیں. چنگیز خان اور ہلاکو وہ ایک تھوڑی تھا، انہوں نے تو بغداد میں یہی حال کیا، لیکن آج دیکھ لیں تو دنیا میں جو ہے وہ ہر طرف ہمیں یہی تباہی نظر آتی ہے کہ جو جنگ کرنے والے ہیں تو جنگ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرا جو تکلیف میں ہے اس کی تکلیف کو دور کرنا ہے. جنگ کا مقصد کچھ اور ہی ہوتا ہے، اپنے فوائد ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد کے لیے نام امن کا لیا جاتا ہے. ہوتی جنگ ہے اور کہا جاتا ہے، ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے امن کا، جیسے بھیڑیے کے روپ میں کوئی آ جائے اور کہے کہ نہیں جو ہے میں جو ہوں وہ میں امن قائم کرنا چاہتا ہوں، تو کبھی انسان بھیڑیا بنتا ہے، کبھی چیتا بنتا ہے، کبھی خونخوار درندہ بن جاتا ہے، شیر بن جاتا ہے، اور چیرتا پھاڑتا چلا جاتا ہے. تو آج کا دور جو ہے وہ موجودہ دور بھی ایسا ہی دور ہے. تو اب ملکہ اپنے درباریوں کو ڈراتی ہے اور ان کے جنگ کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور ان کو بتاتی ہے کہ بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پر جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا مقصد افسدوہا ہے، اس میں فساد کھڑا کر دینا، یہ نہیں ہے کہ آمنوہا، یہ نہیں ہے کہ اس میں امن قائم کریں، یہ نہیں ہے کہ انسان کو غلامی سے آزاد کرے. تو غالباً ایسے لگ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے فوجی بھی ایسا ہی کریں گے، اس کا یہ گمان ہے، اور عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا تھا. جتنی بھی جنگیں ہوئیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب مکہ پہ آ کے چڑھائی کی؟ ایک جنگ بھی ایسی نہیں ہے. فتح مکہ میں آپ آئے ہیں مکہ میں، لیکن آپ نے کیا کیا تھا؟ امن کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ امن کے علمبردار تھے، ہے نا؟ تلواریں جو تھیں وہ نکالی نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، کیا کہا تھا، لا تصریب علیکم اليوم، معاف کر دیا تھا، معافی کا اعلان کر دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، آپ کے اس اسوے کو صحابہ نے بھی اپنایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، آپ نے جب فوجوں کو بھیجا تو کیا کہا تھا، بچوں کو اور بوڑھوں کو ان پر جو ہے وہ تلوار نہ اٹھانا، ان پہ ان کو قتل نہ کرنا، کھیتوں کو برباد نہ کرنا، ہے نا؟ جو یہ کہے کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے ان کو بھی مارنا مت. اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ جو وہاں پہ دوسرے اقلیت ہیں، جو غیر مسلم وہاں پہ ہیں، اگر وہ بھی امن مانگتے ہیں تو ان کو امن دے دینا. تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جو ہے جو جنگیں کی تو ان کا مقصد امن تھا، اسلام تھا، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنا تھا. تو آج وہ لوگ جو امن کے علمبردار بنتے ہیں، آپ دیکھیے کہ انسانیت کی تذلیل ہے، کس کس طرح کی جو ہے وہ سزائیں دی جاتی ہیں، اور جو ہے ان سزاؤں میں کس کس طرح کی اذیت ہے، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں، اور بہت سی خاص جیلیں بنائی ہوئی ہیں جس میں انسان کو جو ہے تو یعنی ایسے عقوبت خانے ہیں، ایسے تعذیب خانے ہیں کہ اس میں سزائیں دے دے کر ان کو مینٹلی ٹارچر کیا ہوا ہے، ان کو جسمانی طور پر ٹارچر، جسمانی اعضاء ان کے مفلوج ہو چکے ہیں، ذہن ان کے سوچنے سے آری ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کون تھے، ہمارے بچے کہاں ہیں، ہم کیا کرتے تھے، ہم کہاں سے ہمیں لایا گیا، ہمیں کس جرم میں لایا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے علمبردار ہیں، جن کا چارٹر یہ ہے، جن کا جو ہے وہ ضابطہ یہ ہے کہ ہم امن کے نام پر جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو کیا ہے، عزتوں کو لوٹنا، ہے نا؟ عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو پکڑ کر کئی کئی فوجی ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، فلسطین ہے، کشمیر ہے، افغانستان ہے، ہے نا؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں سربوں نے کیا کیا، उसके बाद आप देख लें कि रूस ने क्या किया और बहुत से ममालिक में। तो असल बात क्या है कि दुनियादार लोग ऐसे करते हैं, वकाजाली का यह फलून, और वो यही कुछ किया ही करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बाज लोग ये कहते हैं कि पहले तो मलका ने ये बात कही यहां तक अजिल्ला तक, कालत इन्नल मलूका से लेकर अजिल्ला तक मलका का कॉल है, वकाजाली का यह फलून ये अल्लाह ताला का कॉल है, कि मलका के कॉल की तईद में अल्लाह ताला कहते हैं कि हाँ दुनियादार बादशाह ऐसा किया ही करते हैं। और दूसरी राय क्या है कि ये बात जो है ये दोनों कॉल ही मलका के कॉल हैं, पालत से लेकर अजिल्ला तक, जब ये भी मलका का कॉल है, व कजाली का या फलून ये भी मलका का कॉल है, तो दो दफा क्यों आया, ताकीद के तौर पर, कि मलका जो है वो अपने दरबारियों को समझा रही है कि जंग कोई नहीं करनी, इसलिए कि लोग बड़ी तबाही करते हैं। तो गोया के वो मलका बड़ी ही अकलमंद थी। इससे क्या बात पता चलती है, बाज़ औक़ात जब अपनी घरेलू जिंदगी में आप मशवरा करते हैं या दोस्तों से, तो दोस्तों का मकसद भी लड़ाना होता है, मामले को सुलझाना नहीं होता है ना। ऐसा मशवरा देंगे जिसमें दोस्तों में लड़ाई हो जाए, जिसमें माँ बाप में लड़ाई हो जाए, मियां बीवी में लड़ाई हो जाए, औलाद और माँ बाप में या बच्चों में लड़ाई हो जाए, खैरखा लोग कम होते हैं ना। तो मशीर बड़े अच्छे होने चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किसी ने कहा कि आपका दौर तो बड़ा ही जंगों का दौर है, जंगो जदल। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा उनका दौर तो बड़ा अच्छा दौर था। तो उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि उनके मशीर हम थे और हमारे मशीर तुम हो। क्या बात कही, उमर के और अबू बकर के मशीर हम थे, हमारे मशीर तुम हो, फर्क बस इतना है। तो अच्छे मशीर का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अच्छे वजीर का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अच्छे साथियों का होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और मशवरा वो ऐसा दे जिसमें अपना कोई मतलब ना हो, कोई दुनियादारी ना हो, कोई अपनी जो है वो अपनी जैसे होती है ना बर्तरी का इजहार ना हो, किबर ना हो, सिर्फ और सिर्फ भलाई देखी जाए और इस्लाम जो है उसको देखा जाए, बेहतरी को देखा जाए। तो हमें भी जरूर सोचना चाहिए कि मेरा मशवरा आग को भड़काता है या आग को बुझाता है। दो मियां बीवी लड़े हुए थे, उनको सुलझा कर आपस में वो शीरो शक्कर हो गए कि दोनों में तलाक हो गई, है ना। मेरा मशवरा कैसा मशवरा है, मैं क्या करती हूं, मैं क्लास के अंदर एक मशवरा देती हूँ, सबको मुसीबत में डाल देती हूँ, या सबके लिए खैर खाही चाहती हूँ, आसानी चाहती हूँ, मशवरा दे के इसरार करती हूँ, या मशवरा दे के कह देती हूँ वल अमरु इलैक फंजुरी माजा तामुरीन, है ना। मशवरा दे के फिर अपनी राय पे इसरार तो नहीं करती, फिर छोड़ देती हूँ कि ठीक है जो है उस्ताद क्या चाहता है। इसी तरह वालदैन को जब मशवरा दें तो इसरार करना कि नहीं नहीं वही मुझे यही काम करना है, या फिर ये कि ठीक है मेरा ये मशवरा है, मैं ये चाहती हूँ, फिर आपकी ये मर्जी है। मसलन एक औरत कहने लगी कि मैं ये चाहती थी कि कुर्बानी बाहर की बजाय यहाँ होनी चाहिए, यहाँ में हम रह रहे हैं ना, लेकिन मेरे शौहर तो हर साल बाहर के ममालिक में कुर्बानी भेजते हैं, कभी अपने मुल्क में कभी कहीं और। तो मैंने मशवरा तो दे दिया लेकिन फिर मामला अपने शौहर पे छोड़ दिया कि ठीक है मेरा दिल तो ये चाहता है लेकिन आगे फिर आपकी मर्जी, है ना। तो इससे क्या बात पता चलती है कि घरों में लड़ाइयां नहीं करनी चाहिए, मशवरा अच्छे से देना चाहिए, दलाइल के साथ देना चाहिए, और फिर अपनी राय पर इसरार नहीं करना चाहिए ताकि घरों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां ना हो जाएं। तो ये है असल बात। और मशवरे का मकसद क्या होना चाहिए, अमन ना के जंग, इज्जतों को बचाना ना के इज्जतों को लूटना, खून जो है वो बहते ना बहने लगे बल्कि जो है वो लोग आपस में मोहब्बत और प्यार से रहने लगे। अच्छा, अब वो अपने दरबारियों को दलील के साथ जो है वो कायल करती है कि जंग नहीं मकसूद, जंग नहीं करनी, जंग का बड़ा नुकसान होगा। और बाज लोग जो ऐसे ही जंग में कूद पड़ते हैं तो फिर क्या होता है कि साला साल बाद वो कहते हैं कि वो मकसद हमारा तेल नहीं था और मकसद हमारा जो है वो ये नहीं था, बल्कि मकसद जो है अब क्या है कि वो पता ये चला कि नहीं वो बात ये नहीं थी, वो ऐसी ही बात थी। यानी हजारों लाखों लोगों को جو ہے وہ خون ان کا بہانے کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد، انسانیت جو ہے اس کو تباہ کرنے کے بعد، زمینوں کو، فصلوں کو تباہ کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ فوجوں کو ہٹانا ہے نا. تو یہ کیا ہے، یعنی کیا یہ ترقی ہے، کیا یہ تہذیب ہے، کیا یہ امن کے علم برداروں کا کام ہے؟ تو جنگوں کی بجائے امن کا پیغام ہونا چاہیے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے وہ کزالی کا یہ فلون، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. تو انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، اسی طرح جو ہے ملکوں کی سطح پہ بادشاہ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں لڑا رہے ہیں لوگوں کو. اسی طرح بین الاقوامی سطح پہ جو جتنے بھی ممالک کے بادشاہ ہیں ان کو بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اب امن بڑھ رہا ہے یا کہ جنگ بڑھ رہی ہے، تو جنگ کو روک کر امن کی طرف کیسے پیغام جو ہے وہ لے جایا جائے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور بے شک میں جو ہے وہ روانہ کرتی ہوں اس کی طرف، بے ہدیۃً، ایک ہدیہ، ایک تحفہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر میں دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. بِمَا کیا، يَرْجِعُ، وہ لوٹتے ہیں، الْمُرْسَلُونَ، جو بھیجے گئے ہیں.